नमस्कार श्रोताओं, 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई के एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम छूलो आसमान में आपसे रूबरू होंगे इंडो अमेरिकन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट श्री सुनीत सुरवसे। आपसे बातचीत करेंगे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज और इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिटरसेन।
हमारे साथ हैं सुनीत सुरवसे जी, जो खुद का एजुकेशन बिजनेस चलाते हैं, सॉफ्टवेयर चलाते हैं। बस मेन लेकिन इनका यह है कि जो इंडो अमेरिकन सोसाइटी है इसके प्रेसिडेंट हैं और बहुत एक्टिव हैं। सुनीत जी, वेलकम टू ऑल इंडिया रेडियो।
थैंक यू, धन्यवाद।
अभी शुरू करते हैं अपने इनसे विचारधारा करने का। आप कोई एजुकेशन कंपनी चलाते हैं, ऐसा आपके बायोडाटा में लिखा
है। हाँ जी, यस।
क्या है ये?
ये इंटरनेशनल एजुकेशन कंपनी है और स्टूडेंट्स जो अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाते हैं, हम उन स्टूडेंट्स को हर चीज़ में
फ्री एजुकेट करते हैं,
एजुकेट करते हैं, असिस्ट करते हैं। उनको जो कंसल्टिंग जो लगता है, कहाँ कभी कैसे जाना है, वो सब हम करते हैं। आज 14 साल से ये हम कर रहे हैं मुंबई में और पुणे में।
तो इनको प्रिपेयर ही करते हैं, एक्चुअल एजुकेशन भी कोई है ना, कोर्सेज चलाते हैं आप?
हम कोर्सेज नहीं चलाते, बट हम अमेरिका में, कनाडा में, यूके, यूरोप में जो तरह तरह की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो है, हम उनके साथ काम करते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम काउंसलिंग करके, गाइडेंस देके, हमको ये जानना होता है कि ये कौन से कहाँ पे राइट फिट होंगे विथ रिगार्ड्स टू उनका जो एकेडमिक्स है और उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उस हिसाब से हमको वो हम करते हैं।
तो इसमें आप मतलब है ना, ये सब है ना यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े हुए हैं आप?
Yes.
तो प्लेसमेंट भी दिलाते हैं उनको?
नहीं, दिस इज ये पूरा एजुकेशनल एक्टिविटी है। हम जॉब्स के लिए ऐसे हेल्प नहीं करते, कोई उस तरह का काम नहीं है, ओनली एजुकेशन स्पेसिफिक है। बट अभी अपना हमारा 14 साल में जो इतना बड़ा स्टूडेंट्स का ही जो नेटवर्क हो चुका है, उसमें से ऑटोमेटिकली काफी लोगों को हम वो हिसाब से भी मदद करते हैं।
स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहता है कि है ना कौन से एजुकेशन, कौन से यूनिवर्सिटी में जाएं, कैसे अप्लाई करें, वो भी बड़ा प्रोसेस है।
ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस है। ये कोई भी अगर जब स्टूडेंट हमारे पास आता है तो उनका कम से कम 12 से 15 महीने का ये प्रोसेस है कि कहाँ से कैसे करना है, कौन से टेस्ट्स है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरा प्लानिंग हमारे इधर होता है।
मैंने भी अप्लाई करा था एक बार, आई एम टॉकिंग ऑफ व्हेन आई वाज अबाउट 20।
अच्छा।
तो साइरा क्रूज में और स्टैनफोर्ड में मुझे मिला था एडमिशन, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी पीरियड ऐसा आया कि मैं गया ही नहीं।
अच्छा।
अपने नॉर्मल एजुकेशन करके आगे बढ़ गए। कोई आईटी फर्म भी चलाते हैं?
यस, आईटी फर्म विस्टॉर्म सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। आईटी फर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड जो है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। 1998 में मैंने इंजीनियरिंग पूरी की और उसके बाद मुझे मैंने सॉफ्टवेयर फ्रीलांसिंग मैं कर रहा था, तभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि जॉब नहीं मिल पा रहा था और सॉफ्टवेयर बिजनेस भी ठीक से
जॉब नहीं मिला, तो खुद की कंपनी चालू कर दी। ये तो बड़ा शॉर्टकट है।
यस, सो तो उस दरमियान जब ये जो दौर था कि जॉब नहीं मिल रहा है और सॉफ्टवेयर बिजनेस, तभी मैं अकेला था और कोई मेरे साथ था नहीं, तो एक टाइम पे मैं खुद अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहा था और वो लास्ट मिनट कैंसिल हो गया। मेरा एडमिशन हुआ था दो यूनिवर्सिटीज में, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, लास्ट मिनट पे वो नहीं गया मैं। तो एजुकेशन कंसल्टिंग शुरू हुआ एंड एजुकेशन कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर एक साथ हो रहा था, बट एजुकेशनल कंसल्टिंग अभी 13-14 साल करने के बाद मुझे लग रहा था कि हम थोड़ा, मेरा जो ओरिजिनल इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो भी करेंगे। हाँ, ये मैंने 2015 में शुरू किया मैंने, और अभी उसमें हमारा जो एक्सपर्टीज जो है वो है क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो बॉट्स हम बोलते हैं, हम उसमें अभी काम कर रहे हैं। और हमारा अभी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए ही अभी हमारे जो प्रोफाइल बन चुका है, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये कर रहे हैं।
अभी एक गाना आएगा, आपकी कोई फरमाइश है?
यस, आने वाला पल जाने वाला है, गुलमाल फिल्म से।
Mm-hmm. सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है ओ आने वाला सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है एक बार यूं मिली मासूम सी गली एक बार यूं मिली मासूम सी गली हो खिलते हुए कहा खुशबाश मैं चली देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है
बताइए आईटी फर्म के बारे में
ओके
कितने लोग काम करते हैं और एग्जैक्टली क्या काम करते हैं उसमें
अभी मेरी आईटी फर्म जो उसमें 10 जनों की टीम है और हमने जो 13-14 साल जो एजुकेशन कंसल्टिंग में काम किया है इसका सबसे पहला जो आइडिया था आईटी फर्म शुरू करने का वो ये था कि जो हम स्टूडेंट कंसल्टिंग जो कर रहे हैं इतने सालों से वो एक एक तरीके से ऑफलाइन मोड में है मतलब लोग आएंगे ऑफिस में आएंगे बैठेंगे एंड आगे जो प्रोसेस होना है वो होगा बट ये जो हमने 13-14 साल जो ऑफलाइन तरीके से काम किया है हमको ये मुझे ये लग रहा था कि ये हम ऑनलाइन बड़े तरीके से ग्लोबली ले जा सकते हैं तो एक ऑनलाइन पोर्टल जो बनाना था जो मेरी आइडिया काफ़ी सालों से मैं उस पर प्लान कर रहा था मुझे उसके लिए ये टीम डेवलप करनी पड़ी असली रीज़न उसका ये है और हमने अभी 2 साल में वो पोर्टल पूरा बना दिया है अभी ऑलमोस्ट वो रेडी टू लॉन्च है ऐसे हम कह सकते हैं कम से कम 40,000 प्रोग्राम्स अभी उसमें रेडी है ऑनलाइन कोई भी जा सकता है कोई भी कंट्री का कोई भी स्टूडेंट हो आइडिया ये है कि जो दुनिया भर की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस है और सारे स्टूडेंट जो है अगर उनको एक एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए तो दोनों जो ग्रुप से उनको फायदा हो जाएगा। ये एक ये था और हमारा उसमें बैकग्राउंड भी है और हम वो प्रोसेसेस इजीली ऑनलाइन कर सकते हैं, ये आइडिया बेसिकली था।
थोड़ा आपके यंगर एज में जाएंगे, आपके ग्रोइंग ईयर्स क्या थे, स्कूलिंग क्या करा, कॉलेज क्या करा आपने?
ओके, मैं बॉम्बे में ही पढ़ा हूँ, मैं ठाणे सिटी में, और 12th के बाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रवरा नगर में, मैं पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर है वो, मैं वहाँ पे पढ़ने गया। बड़ी ही छोटी कंजर्वेटिव मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में थे, वो अभी रिटायर हो चुके हैं। माई मदर ऑल्सो, मेरी मम्मी टीचर थी, 10th तक वो मुझे ही पढ़ाती थी। एंड मैं कभी बोलता हूँ कि आई कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ टीचर, काफ़ी मेरे डैडी के साइड और मम्मी के साइड काफ़ी लोग टीचर्स हैं। तो ये है कि बड़ा ही एक छोटा अच्छा मिडिल क्लास परिवार है हमारा। और 12th के बाद इंजीनियरिंग को मैं पुणे यूनिवर्सिटी में गया, PREC लोनी प्रवरा नगर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रवरा नगर, पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर है। और वहाँ से कुछ कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट था, मैं बहुत ही अच्छे एक वातावरण में गया और बहुत अच्छा ग्रुप वहाँ पे हो गया, कॉलेज भी बहुत अच्छा था मेरा। सो बट उसके बाद इफ यू कैन रिमेम्बर वो Y2K का जो दौर था, तभी 98-99 में जब मैं कंप्लीट हुआ मेरा इंजीनियरिंग, तभी जॉब्स मिलना बहुत, मैं कम से कम साल भर से ज्यादा मैं वेट कर रहा था, घूम रहा था। आज जिस जो इंडो अमेरिकन सोसाइटी जहाँ पे वहाँ पे मैं पता नहीं 100 बार मैं चक्कर काट चुका हूँ वो सारे इधर उधर, पर जॉब नहीं मिला। और आखिर एक टाइम ये आ गया कि मैंने खुद का फ्रीलांसिंग कंसल्टिंग शुरू कर दिया और उसके बाद जो भी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करा था आपने, डिप्लोमा?
इलेक्ट्रॉनिक्स बी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग।
ओके,
यस, मैंने बी कंप्लीट।
अभी तो उसका रेलेवेंस रह ही नहीं गया होगा, इतना चेंज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में।
बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा चेंज, मतलब आज पिछले 20 साल में दुनिया बहुत ही बदल गई है, नया सब दौर आ गया है, IT और ब्रॉडबैंड, और हम काफी उसके आगे निकल गए, पूरा IT टेलीकॉम कम्युनिकेशन सब अभी एक एक तरीके से एक वर्टिकल बन गया।
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बी इलेक्ट्रॉनिक्स मैं भी हूँ।
ओके,
लेकिन आपसे करीब है ना 20 साल पहले का, तो उस टाइम तो उसका तो अभी का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। उस टाइम सिखाते थे और डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स का सिखाते थे, वो तो अभी कोई सुनता भी नहीं वो नाम।
बट आई थिंक सॉरी, वो तो एक बेस बहुत अच्छा बन गया था और मेरे ख्याल से वो एक असलियत में वही तो वही शुरुआत थी। ये बात अलग है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब कभी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन शुरुआत तो वही से हुई है।
एनी अदर फरमाइश?
एक गाना है, मेरा चांद आया है नजर।
चाहत है अभी नई नई रह जाए ना प्यासा प्यार मेरा मेरी बाहों में भर दे यार मेरा इतना सा करम तू कर मुझ पर इतना सा करम तू कर मुझ पर है रात जरा थम थम के गुजर है रात जरा थम थम के गुजर मेरा चांद मुझे आया है नजर खिलना है अभी तो जिस्मों को मिलना है देखूंगा भी मैं वो मंजर देखूंगा भी मैं वो मंजर है रात जरा थम थम के गुजर है रात जरा थम थम के गुजर मेरा चांद मुझे आया है नजर मेरा चांद मुझे आया है नजर है रात जरा थम थम के गुजर है रात जरा थम थम के गुजर मेरा चांद मुझे आया है नजर आया है नजर आया है नजर
अच्छा आप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं इंडो अमेरिकन सोसाइटी के ये इसमें थोड़ा सा मुझे ताजुब लग रहा है क्योंकि आप हैं बहुत यंग कितने 40s में है
40
40
एग्जैक्ट
40 सो ये चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में तो लोग जब 70 के हो जाते हैं 60 के हो जाते हैं जब उनको चांस मिलता है प्रेसिडेंट बनने का हाउ डिड यू बिकॉज़ आई हैव सीन आई एम आल्सो अ मेंबर ऑफ योर चेंबर आई हैव सीन द एंटायर कमिटीज इन देयर 60s
राइट
जब मैं आया हूं वहां पर मीटिंग्स के लिए तो हाउ डिड यू बिकम द प्रेसिडेंट
पिछले 10-12 सालों से मैं वहां पे हूं और पिछले स्पेशली 5-6 साल जो है मैं एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर रहा हूं और काफ़ी पहले मतलब आप जो बोल रहे हैं वो बहुत सही है कि बहुत बड़े बड़े लोग वहां पे हैं बहुत बड़े बड़े इंडियन डिग्निटरीज है बड़े स्टॉलवर्ट्स
हैं positions are also very
very, very
how
big.
Did they allow you to do
I think credit unhi ka hai ki unhone mujhe trust kiya mere ideas ko unko shayad unhone believe kiya ki main jo kuch bol raha hu aur thoda mujhe jo lag raha tha ki kuch naye jo changes aane chahiye kuch time to zarur laga kuch convince sab logo ko hone mein aur karne mein but असलियत में मैं आभारी हूँ उन सबका कि उन्होंने मुझे चुना कि ये कुछ
नहीं ऐसा तो नहीं है मैं तो अभी आपके कमेटी पे भी हूँ मैं भी देख रहा हूँ वास्तव में क्या हो रहा है उधर मैं तो ताजुब करता हूँ कि आप इतना ज्यादा डेप्थ में अभी चले गए हो सोसाइटी के काम में तो बिजनेस कैसे चलाते हैं तो वो तो फुल टाइम काम हो गया वी यू हैंडल इट
यस बिजनेस की बात यह है कि पिछले 13-14 सालों से तो मैं पूरा 10-12-14 घंटे तो मैं पूरा बिजनेस ही कर रहा था और अभी भी है बट पिछले एक 3-4 सालों से मुझे थोड़ा ऐसे लग रहा था कि थोड़ा कुछ तो एक अपने डेली रूटीन में डेली जो काम है उसमें कुछ बदलाव आ जाए कुछ नया कुछ करने को मिले तो थोड़ा मेरा जो मुझे ये जो बाकी ऐसे जो काम है जैसे कि इंडो अमेरिकन सोसाइटी है, कुछ मेरे नेटिव प्लेस में भी हमारा एक हमारी एक संस्था है, इसमें मुझे बड़ी रुचि है मुझे, और मुझे लगता है कि एक डेली रूटीन में से बाहर आके ये कुछ करना ऑटोमेटिकली आप बहुत कुछ इसमें से फ्रेश होके बहुत ज़्यादा कुछ और अचीव कर सकेंगे आगे जाकर।
नशे में जहां है किसी को किसी की खबर ही कहां है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है, समा है सुहाना सुहाना नजर से अफसाने, कह रही है नजर नजर से अफसाने, हो रहा है असर कि जिसको दिल जाने, देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती दिल बेजुबान है, समा है सुहाना सुहाना का मस्ताना, हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना, हो गया है कोई किसी का दीवाना, जहां दिल रुबा है दिल भी वहां है, जिसे प्यार कही वही दरमिया है, समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है किसी को किसी की खबर ही कहां है, हर दिल में दे मोहब्बत
जवां है। आप कोई डेलीगेशन लीड कर रहे हैं टू यूएसए?
हाँ,
सेलेक्ट यूएसए का कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है?
बहुत काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है सिलेक्ट यूएसए, ये अमेरिकन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रीमियर इवेंट है, अमेरिकन गवर्नमेंट का खुद का इवेंट है वो, और मैं खुद वहाँ का वहाँ पे दो बार पार्टिसिपेंट हो चुका हूँ 2014 और 15 साल में,
शायद ओबामा ने चालू करा था, छह साल पहले
प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ये प्रोग्राम शुरू किया था, और उनका ये था कि उन्होंने पूरा जो उनका जो फोकस जो है ग्लोबल बिजनेस का, अमेरिकन फोकस ग्लोबल बिजनेस की जो तरफ जो है फोकस, उन्होंने वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया, पूरा उनका जो कमर्शियल सर्विस है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उनको इस तरीके से उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि ग्लोबल बिजनेसेस को काफी अट्रैक्ट उन्होंने कर दिया। अभी तक सिलेक्ट यूएसए से कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं, हर साल वो प्रोग्राम होता है, और मैं खुद यूएस डेलीगेशन जो यूएस एम्बेसी का जो डेलीगेशन था 2014-15 में, मैं खुद उसका एक मेंबर था, और वहाँ जाके मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, हो सकता है जो अपने इंडियन बिजनेसेस है, छोटे बड़े एसएमईज जो है अपने, या कोई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, अगर वो भी जाना चाहे तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया एक्सपोजर कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो ये बोलूंगा कि जो नेटवर्किंग हम वहां जाके कर सकते हैं, अगर ऐसे ही अगर हम करने गए तो कम से कम 2 से 4 साल लग जाएंगे
उतने
कॉन्टैक्ट्स उतना नेटवर्किंग बनाने में, वो जो है वो 2-3 दिन में हो सकता है वहां पे। एंड अमेरिकन गवर्नमेंट जो है अभी उनका बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन चुका है मुंबई में, दिल्ली में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में उन्होंने उनके ऑफिस को पूरा कम्प्लीटली उनका आउटलुक चेंज हो गया
है। इंडियन कंपनीज के क्या फायदे का है, यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए है या जॉइंट वेंचर बनाने के लिए है या क्या?
इंडियन
कंपनी को देर
इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनीज के लिए यह है कि पहले तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट हैविंग द मोस्ट प्रोडक्टिव वर्क फोर्स, थ्राइविंग इनोवेशन है उनका, कल्चर जो है वो, और सबसे बड़ा मोस्ट अट्रैक्टिव कंज्यूमर मार्केट है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बात है कंपनीज के लिए और जो बिजनेसेस है यहाँ के और दुनिया भर की, उनके लिए जो ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस जिसको कहते हैं, वो बहुत कुछ ईजिली हो सकता है वहाँ पे। और डायरेक्टली सिंगल विंडो प्रोसेसेस उन्होंने जो बना दिए है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से मेरे काफी बार मैं देखता हूँ कि काफी बिजनेसेस बहुत इजीली जाके जो पहले कभी मे बी 10 साल पहले भी शायद ये ठीक ठाक से नहीं शायद मिलता होगा किसी को, आज वो बहुत बड़ी तरीके से इजीली हो गया है।
जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मिलेगा।
नहीं समझे है वो हमें
तो क्या जाता है, बाजी को जीतना हमें आता है। अपनी ये रास्ते अपने कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो हट जाएगा वो घबरा के, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरा। नहीं समझे है वो हमें क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है।
निभाली मतवाली पर या जो है अब दौलत पे कुर्बान। जब भी मंदिर की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान।
यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हम भी है शहजादे गुलबान।
नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है,
हारी बाजी को जीतना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूमके धरती डोलेगी ये तरंग झूमके, चुमके। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है।
हमने सुना है कि आपके फैमिली में कोई सोशल वर्क काफी करते हैं, आपका लातूर में कोई बहुत बड़ा संस्था है जहाँ फ्री एजुकेशन मिलता है।
एक्चुअली मेरे जो दादाजी थे उन्होंने ये एक बोर्डिंग स्कूल शुरू किया था, उसका फाउंडेशन 1947 जिस दिन जिस वक्त उस दौर में
बिफोर दैट या आफ्टर दैट
एग्जैक्टली 1947 और तभी से लेके आज तक हमारी वो संस्था चालू है। जो अपने सोसाइटी में जो बहुत गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए वो शुरू किया हुआ है और आज 70 साल हो गए और आज भी वो अच्छी तरह से चालू है।
पिछले चल जाए
हाँ, एंड पिछले 6-7 सालों से मैं खुद वो हैंडल कर रहा हूँ।
तो खुद कॉलेज चलाते हैं वहाँ पे या?
नहीं, कॉलेज हमारा बोर्डिंग स्कूल है, क्योंकि गांव में क्या होता है आज काफी लोग जो है उनको रहने के लिए जो पढ़ाई के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाते हैं तो उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती, उनको आज कॉस्ट काफी बढ़ गया है हर चीज का, तो हम उनके लिए स्पेशली हम ये बोर्डिंग चलाते हैं।
हॉस्टल टाइप का है,
हॉस्टल टाइप है और एफिलिएटेड टू काफी स्कूल्स जो होती है उनसे वहां पर हमारे बच्चे जाते हैं जो हमारे साथ एफिलिएटेड है। तो वो उस तरीके से हमने आज तक जो हमारे दादाजी ने शुरू किया था वो आज 70 साल में हमने हजारों स्टूडेंट्स को हमने हेल्प की है और कई लोगों की तो थर्ड जनरेशन आज हमारे पास है।
तो इसकी फंडिंग कैसे होती है?
ये
फ्री का कर रहे हैं सारा।
हाँ, ये जो है ये जैसे मैंने बोला आज 1947 से चालू है तो आज कम से कम 40-45 साल हो गए इसको गवर्नमेंट का फंडिंग है। वी आर प्रोबेबली द ओल्डेस्ट एजुकेशनल ट्रस्ट इन द स्टेट, सो पूरा फंडिंग पे है और काफी आज हमारे जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं काफी आज वो एक कल्चर बन चुका है, वो आके वो भी कुछ मदद कर देते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से वो
ऑलरेडी बिल्ट अप अ फुल
राइट।
तो इंडो अमेरिकन का जो है विल कम बैक टू दैट,
ओके,
ये संस्था भी कुछ सोशल वर्क करती है या इट्स अ प्योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन?
ये जो इंडो अमेरिकन सोसाइटी जो है ये एक्चुअली ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एजुकेशनल सोशल और कल्चरल फ्रंट पे काम करती है एंड 1959 जो है 1959 में इसका फाउंडेशन है और उस वक्त जो अमेरिकन एम्बेसडर जो थे एलिजाबेथ बंकर, सर एलिजाबेथ बंकर, वो उन्होंने और सर होमी मोदी इन दोनों ने मिलके ये शुरू किया था और तब से लेके आज तक एजुकेशनल सोशल कल्चरल फ्रंट पे न जाने कितने काम हो चुके हैं और बहुत बड़े बड़े डिग्नेटरीज एंड बड़े बड़े पर्सनालिटीज आज नाम पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अधि गोदरेज जी है जो है, हरीश महिंद्रा जी, केशव महिंद्रा जी, नानी पालखीवाला जी, ये प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं हमारे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये एक छोटा जो पेड़ जो लगाया था आज 60 साल पहले, आज 60वां साल हमारा शुरू हो गया है, आज उसका बहुत बड़ा पेड़ बन गया है और उसकी छांव में न जाने कितने लोगों को आज फायदा मिल चुका है।
कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है कोई बेकार है, कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ,
है सच तो ये दोस्तों
के लिए तो बहुत अच्छा काम है ये कि मतलब इतने बड़े बड़े लोग का काम अभी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं।
मैं बहुत लकी समझता हूँ खुद, मुझे उनके फुटस्टेप्स पे आगे आई विश आई विल टेक दैट लेगेसी फर्दर।
आई कैन सी योर वर्क, यू विल डू वेरी वेल।
थैंक यू।
अभी क्या एक साल हो गया आपको प्रेजेंट?
छह महीने हो गए
हैं। नॉर्मली क्या तीन साल का टर्म है?
एक साल का टर्म होता है।
एक साल तो बहुत कम है, आपको चालू करें उसके पहले खत्म हो जाता है। कम से कम तीन साल तो होना चाहिए।
होना चाहिए, यस।
नेक्स्ट मीटिंग में आई विल सजेस्ट जब मैं आऊंगा। आई जेन्युइनली बिलीव दैट। अभी इंडिया में एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस चल रहा है। इंटरनेशनल कंपनीज भी बहुत आ रही हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, प्राइवेट कंपनीज। तो क्या सिचुएशन है इंडिया का विज़ाविज़ ग्लोबल एजुकेशन?
सिचुएशन बहुत अच्छी है और थोड़ा एक चिंताजनक भी कह सकते हैं। आज इंडिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऐसा है कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें से 50% पॉपुलेशन आज बिलो 25 है। तो इतनी 50% पॉपुलेशन इज बिलो 25 एंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो 35। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है आज अपने, अगर एक तरह से सोचा जाए तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है और एक तरह से सोचा जाए तो हमारे पास चैलेंज ये भी है कि अगर अभी हम ये जो यंग ग्रुप जो है इनको हम कैसे नर्चर करें, इनको कैसे मोल्ड करके इनको एक कैसे राइट डायरेक्शन में डालें। वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग जो है आज, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है हमारा। तो उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज आप देखिए, आज 2022 में ऐसे होने वाला है कि 1 in 4 graduates in the world will be out of the Indian education system. सो इतनी बड़ी आज अगर हमारी ताकत बन रही है तो मुझे लगता है कि ये इस पर बहुत बड़ा वर्क होना ज़रूरी है और इसलिए तो आज आप देखेंगे तो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़, दुनिया की पूरी नज़र आज बिजनेसेस, रिटेल मार्केट सबकी नज़र आज इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी मार्केट इंडिया बन चुका है।
कंसर्न इसमें यह है, ये जो भी आप बता रहे हैं पहले मोस्टली एजुकेशन सिस्टम द कॉलेजेस यूज्ड टू बी रन बाय ट्रस्ट, अब ये सारे प्राइवेट आ गए हैं, कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा फिर एजुकेशन का इंडिया में, और मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर, तो कैसे right. मीट होने वाला है ये?
एग्जैक्टली यही, ऐसे कई सारी चैलेंजेस अपने सामने हैं, और कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया टू दिस एक्सटेंड दैट कई बार हम देखते हैं कि इंडिया में आज जो कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जो कॉस्ट है वो तो उससे थोड़ा कम, पर अब्रॉड में कम है. तो कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि अगर यही कॉस्ट अगर हमें यहाँ पे देना है तो वाई नॉट टू हैव इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑल्सो विद द गुड एजुकेशन. एजुकेशन इंडिया में भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है, बट जो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए वो उस स्पीड में नहीं बन रहा है जिस स्पीड में हमको बनाना है. तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी तो बड़ी है अपने सामने, बट
आम स्टूडेंट का अपने तो ये आजकल देखते हैं कि भी कॉलेज पूरा नहीं हुआ क्या तो चले फॉरेन,
राइट?
तो ये कोई एक किस्म का ब्रेन ड्रेन नहीं है?
ब्रेन ड्रेन नहीं है
कि वहां जाके फिर आप जॉब ले लेते हैं, यहाँ से तो निकल ही जाते हैं.
इसमें दो बातें, एक तो आज आप देखेंगे कि जो हमें अभी जो बात कर रहे थे टोटल जो पॉपुलेशन है उसके मुकाबले में आज कितने जॉब्स क्रिएट हो रहे, एक बात है. उसके जॉब्स तो बाद में है लेकिन एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप देखेंगे तो कई कॉलेजेस है जहाँ पे दिल्ली में कॉलेजेस है, बैंगलोर में है, मुंबई में है, कि स्टूडेंट्स कम से कम 200-400 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको 100% मार्क्स है. तो अगर ये ट्रेंड ये चलता रहा तो बाकी स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है कि अब्रॉड एक अच्छा ऑप्शन डेफिनेटली हो सकता है, और उसमें कोई गलत नहीं है. आगे जाके अगर आप स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं और वापस वो रिवर्स रेन भी एक टाइम पे अगर शुरू हो जाए तो वो भी अपने लिए ही अच्छा है मेरे ख्याल से.
आई होप कि स्टूडेंट्स ये अपने डिस्कशन अपने टॉक को सुन रहे हैं.
yes.
बस अपने बात करते करते सिर्फ स्टूडेंट्स और एजुकेशन में चले गए.
राइट.
सो लेट अस होप कि है ना ये थोड़ा सा ज्ञान उनको भी मिले, मुझे तो मिल ही गया है. लास्ट में ये बताइए कि आप और क्या बोलना चाह रहे हैं, तो आप मुझे जवाब दे रहे हैं, अपने आप से आप क्या बोलना चाह रहे हैं अपने बारे में या जनरल ट्रेंड के हिसाब से?
एक है कि अभी मैं जो भी कर रहा हूँ आई एम रियली एंजॉइंग, मतलब मेरा जो एजुकेशन कंसल्टिंग है, इंडो अमेरिकन सोसाइटी में जो काम है, जो वर्क हो रहा है उसमें काफ़ी मैं एंजॉय कर रहा हूँ. मेरा जो आज तक का एक्सपीरियंस रह चुका है वो लाइफ एक्सपीरियंस जिसको हम शायद अगर बोल सकते हैं, तो वो इट हैज़ बीन थ्रू ट्रैवलिंग. तो ट्रैवलिंग, विजिटिंग प्लेसेस एंड मीटिंग पीपल, तो सबसे अच्छी वही बात है कि मैं वो आगे तक और लेके जाना चाहता हूँ. और जब तक मैं इंडो अमेरिकन सोसाइटी में हूँ वहाँ पे जितना कुछ हम अलग अलग नया कुछ इनिशिएटिव्स ला सकते हैं, नए प्रोग्राम्स कर सकते हैं.
तो आपके हिसाब से एजुकेशन थ्रू ट्रैवल,
एजुकेशन
ये भी इम्पोर्टेंट चीज है.
यस यस डेफिनेटली.
मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा जूता है जापानी.
तो थैंक यू वेरी मच सुनीत सुरवासे जी, इंडो अमेरिकन सोसाइटी के प्रेसिडेंट.
थैंक यू.
मैं विकास मित्तसेन, चेयरमैन नजारा टेक्नोलॉजीज एंड प्रेसिडेंट आईबीजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स. थैंक यू वेरी मच.
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर.
निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने. मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने. पढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा जूता है जापानी. लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की. नादा है जो बैठ किनारे पूछ रहा वतन की, पूछे राह वतन की, चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी।
श्रोताओं, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई के एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में कार्यक्रम छूलो आसमान में अभी आप सुन रहे थे इंडो अमेरिकन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट श्री सुनीत सुरवसे से की गई, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज और इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिट्टर सेन की बातचीत। अब कार्यक्रम समाप्त होता है। सहयोग सृष्टि जाधव और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।